समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
मेहनत और किस्मत के बीच आज भी लड़ाई जारी है। आज समय है किस्मत का, पर कल मेहनत की बारी है। वैसे देखा जाए तो कल कभी आता नहीं, जो है आज ही है, यानी कल की जाने वाली मेहनत आज ही करनी है, अभी करनी है। वेल, सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बृहस्पतिवार के एक नए दिन की एक नई सुबह में इसी सुविचार के साथ आइए शुरू करें समाचार मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, जिसमें होते हैं राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं मेट्रो समाचार, मौसम का हाल, इतिहास के कुछ रोचक पन्ने और समाज के कुछ विशेष महानुभावों की पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन के बारे में जानकारी। तो स्वीकार कीजिए आप ही के अपने रवि कपूर और अनीता आनंद, हम दोनों का नमस्कार।
Hello, Ravi. Good morning and a very warm welcome to all our listeners. Tune in to Akashwani FM Gold on 100.1 MHz and the Akashwani Network. We bring you our daily news magazine program on Savere, wherein we have the latest in national, international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is the 27th of June. So let's begin with the headlines first, Ravi.
जी बिल्कुल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाएगा, जिस पर सदस्य चर्चा में भाग लेंगे। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र सोमवार को आरंभ हुआ, राज्यसभा का सत्र आज से शुरू होगा।
A team of CBI yesterday reached OSA school in Hazaribagh, Jharkhand to investigate the NEET paper leak case. The CBI salutes interrogated the principal of the school about various aspects related to paper leak. After interrogating, CBI took the principal with them for further questioning. The principal was city coordinator of schools of Hazaribagh for NEET examination. The CBI team also quizzed officials of SBI Hazaribagh where question papers were stored. The Economic Offence Unit EOU of Bihar had earlier said that a partially burnt question paper was seized from the Khemdichag Play School in Patna, matched with a question paper received from the National Testing Agency NTA, and the series of that question paper had been sent to the examination centre at the OSA school in Kallu Chowk, Hazaribagh.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओम बिरला को दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सदन को उनकी अंतर्दृष्टि और अनुभव से बहुत फायदा होगा। श्री मोदी ने श्री बिरला के आगे के कार्यकाल के लिए उन्हें शुभकामनाएं भी दीं।
डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO हैंडेड ओवर द मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्योरेंट चैफ रॉकेट MRMOCR टू द इंडियन नेवी एट अ सेरेमनी हेल्ड इन न्यू दिल्ली यस्टरडे। माइक्रोवेव ऑब्सक्योरेंट चैफ इज अ नीश टेक्नोलॉजी डिवेलप्ड बाय DRDO's डिफेंस लेबोरेटरी इन जोधपुर। इट ऑब्सक्योर्स रेडार सिग्नल्स एंड क्रिएट्स अ माइक्रोवेव शील्ड अराउंड प्लेटफॉर्म्स एंड एसेट्स एंड रिड्यूस्ड रेडार डिटेक्शन। Special type of fibers have been assembled in the medium range chaff rocket. The rocket forms a microwave obscurant cloud in space when fired, spreading over a sufficient area.
दिल्ली की एक अदालत ने कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 3 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तारी से कुछ घंटे पहले ही धनशोधन से जुड़े एक मामले में सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया था। इससे पहले सीबीआई ने केजरीवाल को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया और दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में पेश किया। एक संबंधित घटनाक्रम में श्री केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी वो अर्जी वापस ले ली, जिसमें उन्होंने दिल्ली की शराब नीति से जुड़े धनशोधन मामले में जमानत पर अंतरिम रोक लगाने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी।
Spectrum auction held to meet new spectrum requirement of telecom service providers and for renewal of expiring licenses for continuity and growth of mobile services has concluded successfully. Ministry of Communications said all the available spectrums were put to auction. This year auction has seen activity in 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz and 2500 MHz bands. Minister of Communication Jyotiraditya Scindia in a statement said spectrum auction 2024 was part of a continuous allocation process that is transparent, robust and progressive.
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल चंदनवाड़ी बेस कैंप का दौरा कर श्री अमरनाथ यात्रा की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। अमरनाथ यात्रा इस महीने 29 जून से शुरू हो रही है। उपराज्यपाल ने अधिकारियों और सेवा प्रदाताओं के साथ बातचीत की और शिविर और यात्रा मार्ग में भोजन और ठहरने के प्रबंध, स्वास्थ्य देखभाल, संपर्क, स्वच्छता, बिजली और पानी की आपूर्ति और अन्य सुविधाओं का निरीक्षण किया। श्री सिन्हा यात्रा व्यवस्था की निगरानी रख रहे हैं और श्री अमरनाथ वार्षिक यात्रा से पहले प्रशासन, श्राइन बोर्ड, पुलिस और सुरक्षा बलों और अन्य पक्षों की तैयारियों का प्रत्यक्ष आकलन कर रहे हैं।
एनडीआईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप क्रिकेट द फर्स्ट सेमीफाइनल मैच बिटवीन अफगानिस्तान एंड साउथ अफ्रीका इज अंडरवे एट द ब्रायन लारा स्टेडियम इन त्रिनिदाद। चूजिंग टू बैट फर्स्ट, अफगानिस्तान हैव सेट अ पेटी टारगेट ऑफ 57 रन्स बिफोर साउथ अफ्रीका। इन रिप्लाई साउथ अफ्रीका वाज 6-1 इन 21 ओवर्स अ शॉर्ट व्हाइल अगो। अफगान इनिंग्स वाज इन डीप ट्रबल सिंस द बिगिनिंग एज दे लॉस्ट विकेट्स इन क्विक सक्सेशन। द एंटायर बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स्ड in just 56 runs in 11.5 overs, marking the lowest total ever scored by a team in a semi-final of T20 World Cup. For the Proteas, Tabrir Shamsi and Marco Jensen took 3 wickets each. In the second semi-final this evening, India will lock horns with the defending champions England at the Providence Stadium in Guyana. India have remained unbeaten throughout this tournament. The match will start at 8 p.m. The summit clash of the tournament will be played on Saturday at Kensington Oval in Barbados.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत डॉ कुलपति तिवारी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अपने संदेश में कहा कि डॉ कुलपति काफी लंबे समय से श्रद्धापूर्वक बाबा विश्वनाथ की भक्ति में लगे रहे और आज उन्हीं के श्री चरणों में विलीन हो गए। जम्मू कश्मीर पर्यटन विकास कॉन्क्लेव में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर को विश्व के सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थलों में से एक बनाने में प्रशासन के स्थायी पर्यटन मॉडल विकसित करने के प्रयासों का उल्लेख किया। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन में पर्यटन उद्योग, फिल्म, व्यापार और यात्रा प्रबंधन एजेंसियों के सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि क्षेत्र में कोविड महामारी उपरांत पर्यटन में अभूतपूर्व बढ़ोतरी रही है और विदेशों से आने वाले पर्यटकों में प्रतिवर्ष लगभग 300% वृद्धि हुई है। नई नीतियां, अनुकूल परिवेश, पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन देने और सालों भर रोजगार उपलब्ध कराने के प्रयास से इसमें अपेक्षित सुधार आया है। उपराज्यपाल ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने और इससे जुड़े समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बदलाव के कई सुझाव दिए। श्री सिन्हा ने पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में अधिकतम निजी निवेश के लिए एक रोडमैप तैयार करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दशकों बाद घाटी में बॉलीवुड की वापसी हुई है। तो ये थे अब तक के कुछ मुख्य समाचार।
नए आपराधिक कानून यानी भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे हैं। नए कानूनों के बारे में जानने के लिए एनसीआरबी संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज मोबाइल ऐप को आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप एक व्यापक गाइड के रूप में कार्य करता है जो एक ही स्थान पर नए आपराधिक कानूनों के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करता है।
और अब चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद के समाचारों की जानकारी दे रही हैं अनीता।
Rocket Lane, the software service firm, has raised $24 million in services Series B funding round co-led by 8VC Matrix Partners and Nexus Venture Partners. The total funds raised by Rocket Lane stands $45 million and the startup with operations based out of Chennai and California aims to use the funds for artificial intelligence roadmap to build AI-based products and capabilities in client project delivery. As enterprises focus more on leveraging AI, Rocket Lane's AI-driven capabilities for resource management, efficiency and productivity are expected to provide a competitive edge. The chief executive and co-founder of the startup said that the very unique AI capabilities and first-of-its-kind dynamic client portal in this space, which will expand the gap between Rocket Lane and the competition. Trekking enthusiasts can book online from 20 different trekking routes in Tamil Nadu. The State Forest Department will launch as a dedicated atlas providing detailed profiles of each route. State Forest Minister M. Mathivanan said that basic infrastructure will be developed on these trails to aid trekkers. The existing trekking trails have been reworked with the support of the local community and will be jointly operated by them along with the Forest Department. The Brihat Bengaluru Mahanagar Palike will begin door-to-door survey to locate mosquito breeding spots in the city to prevent spread of dengue. Between January and June this year, there were 1,1230 cases of dengue reported in the city. The Chief Commissioner Tushar Girinath informed media persons that health officers, ASHA workers, A&Ms and link workers will visit houses to look for stagnant water where the mosquitoes have laid their larvae. The team will also educate the public about clearing stagnant water to prevent spread of dengue and also refer patients suffering from dengue to the hospitals. Tushar Girinath said that due to sporadic rains in the city, the mosquitoes have increased considerably. He informed that the dengue cases are increasing in the city and those experiencing fever at frequent intervals should get NS1 test done. He further added that there are 28 lakh houses in the municipal corporation area. Out of them, 14 lakh houses are in densely populated areas and belong to the poor families. Hence, the teams will first focus on these localities, especially those in low-lying areas, to clear any water logging and destroy the larvae. Telangana Chief Minister Ravinder Reddy has urged the centre to declare the southern stretch of the regional ring road as national highway and take up works for expanding the Hyderabad-Vijayawada National Highway into 6 lanes. The Chief Minister called on Union Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari in New Delhi yesterday and discussed expansion of national highways in Telangana. He also requested the Minister to declare new national highways to the state and brief the progress of works on roads taken up as national highways. An official release stated that the Chief Minister requested the centre to declare Chautupal connecting Amangal, Shadnagar and Sangareddy as national highways as the state is bearing the cost of development of national highways from Sangareddy to Chautupal, a stretch of over 158 kilometres as it was already declared as NH. The Chief Minister also urged the centre to declare the southern stretch of regional ring road as national highway and sanction funds for the works under NHAI's budget for the current financial year. The junior doctors in Telangana called off their 3-day strike after the state government issuing an order allocating over 200 crore rupees to the Directorate of Medical Education for Civil Works at 3 major colleges in the state. They held day-long discussions with health department officials and health minister C. Damodar Raj Narasimha regarding their demands, including hostel buildings at Gandhi Medical College, Usmania Medical College in Hyderabad and Kakatiya Medical College at Warangal. The junior docs declared their decision to call off the strike at a press conference held with minister in Hyderabad. The health minister said the department had issued an order sanctioning 406 crore rupees to DME for the current financial year to ensure that there were no delays in stipends. He also mentioned that the GO on civil works has been issued and the tender process would commence soon. He further stated that the issue of the new Usmania General Hospital building is pending in Telangana High Court. And now for Metro News from Delhi, Mumbai and Kolkata, over to Gabi.
Dhanyawad Anita. शुरुआत दिल्ली से करते हैं. भारतीय जनता पार्टी के वयोवृद्ध नेता लालकृष्ण आडवाणी को दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में भर्ती कराया गया है. बढ़ती उम्र संबंधी स्वास्थ्य समस्या के कारण उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है. 96 वर्षीय श्री आडवाणी को एम्स के जरा चिकित्सा विभाग में डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है. एम्स के एक अधिकारी ने बताया कि श्री आडवाणी की हालत स्थिर है और उनके स्वास्थ्य की निगरानी की जा रही है. दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कल कहा कि अरविंद केजरीवाल को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया जाना दिल्लीवासियों के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है. उन्होंने कहा कि श्री केजरीवाल को जिस मामले में गिरफ्तार किया गया है उसे कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने 2022 में दायर किया था. श्री सचदेवा ने कहा कि सीबीआई के पास पहले से ही एक अलग मूल मामला था जिसमें केजरीवाल को पहले भी सीबीआई कार्यालय बुलाया गया था और मनीष सिसोदिया पहले से ही इस मामले में गिरफ्तार हैं. दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जिस तरह आप नेता उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं वे उनके लोकतंत्र में न्यायपालिका के प्रति विश्वास की कमी को दर्शाता है। यात्रियों की सुविधा और अतिरिक्त भीड़भाड़ को कम करने के उद्देश्य से उत्तर रेलवे विभिन्न स्थानों के लिए ग्रीष्मकालीन ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। उत्तर रेलवे ने डॉ अम्बेडकर नगर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक के लिए इस महीने की 29 तारीख से लेकर दोनों ओर के लिए अगले महीने की 11 तारीख तक विशेष ट्रेन चलाएगी। ये ट्रेन डॉ अम्बेडकर नगर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए 29 जून को सुबह 10:30 बजे रवाना होगी, जो अगले दिन दोपहर 2:50 पर कटरा पहुंचेगी। ये ट्रेन सोमवार, बुधवार और शनिवार को डॉ अम्बेडकर नगर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए चल रहेगी। ये ट्रेन वापसी में 30 जून को कटरा से 10:10 पर रवाना होकर अगले दिन 11:50 पर डॉ अम्बेडकर नगर पहुंचेगी। कटरा से डॉ अम्बेडकर नगर के लिए यह ट्रेन मंगलवार, गुरुवार और रविवार को चलेगी। बढ़ते हैं मुंबई की ओर। महाराष्ट्र विधानमंडल का मॉनसून सत्र आज से मुंबई में शुरू होगा। महाराष्ट्र में अक्टूबर में चुनाव होने हैं, ऐसे में यह विधानसभा का अंतिम सत्र होगा। सत्र 13 जुलाई तक चलेगा, जहां अन्य महत्वपूर्ण कामकाज के अलावा महायुति सरकार राज्य का बजट भी पेश करेगी। सार्वजनिक अवकाश होने के बावजूद शनिवार 29 जून को भी सदन बैठेगा। सत्र के हंगामेदार रहने की उम्मीद है, क्योंकि हाल ही में आम चुनावों में मिली जीत के बाद विपक्ष और अधिक साहसी हो गया है और किसानों, बेरोजगारी, पेपर लीक, बिगड़ती कानून व्यवस्था और मराठा आरक्षण समेत अन्य मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछ सकता है। दूसरी ओर सरकार ने कहा है कि वह सभी मुद्दों पर बहस और चर्चा के लिए तैयार है। चलते हैं मुंबई, कोलकाता की ओर। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI 30 जून को ZSI के 109वें स्थापना दिवस पर भारत में पाए जाने वाले जानवरों पर एक चेकलिस्ट पोर्टल पेश करेगा। इस सूची का उद्घाटन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव कोलकाता में एक समारोह में करेंगे। तो ये थे अब तक के कुछ मेट्रो समाचार। आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे रवि और अनीता के साथ, और कार्यक्रम आज सवेरे में अब बात मौसम की। तो सबसे पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का मौसम। मौसम विभाग के अनुसार अनीता, दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में मौसम साफ रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा 25 से 35 प्रति किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा चलने की भी आशंका है। आज का न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई की अगर बात करें तो आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे और भारी बारिश होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और एक या दो बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ेंगी। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वैसे अनीता, हम जब ऑफिस आते हैं सुबह सवेरे तो कंपेरेटिवली जो मौसम है पहले से बहुत अच्छा हो गया।
ओह यस, वेरी प्लेजेंट। दो दिन से तो बहुत ही अच्छा हो रहा है जी। एंड टॉकिंग अबाउट चेन्नई, इट्स एक्सपेक्टेड टू हैव रेन एंड थंडर शावर्स विच वुड अकर टुवर्ड्स इवनिंग और नाइट। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 27 डिग्रीज एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 34 डिग्रीज सेल्सियस। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद वन और टू स्पेल्स ऑफ रेन और थंडर शावर्स। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 23 डिग्रीज एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 33 डिग्रीज सेल्सियस। Hyderabad is expected to have generally cloudy sky with light rain. The temperature will hover between a minimum of 21 degrees and a maximum of 28 degrees Celsius.
और आइए अब पलट लेते हैं इतिहास के पन्नों को और जान लेते हैं कि इतिहास में आज के दिन क्या क्या हुआ। लेकिन अनीता, उससे पहले हम अपने श्रोताओं को जानकारी देते हैं कि आज विश्व सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी MSME दिवस मनाया जाएगा। इस सिलसिले में एसोचैम द्वारा लखनऊ में बुधवार से 2 दिवसीय MSME सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक समूहों के साथ साथ बैंकर्स और स्टार्टअप भी भाग ले रहे हैं। कल सम्मेलन के पहले दिन उत्तर प्रदेश सरकार के MSME मंत्री राकेश सचान ने समारोह का उद्घाटन करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश को 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में MSME की बड़ी भूमिका होगी। उत्तर प्रदेश में MSME को बढ़ावा देना राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। MSME देश की GDP में 40% का योगदान देते हैं और रोजगार उपलब्ध कराने में इनकी हिस्सेदारी 62% है। और अब 27 जून की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी। 1906 में आज ही के दिन महाराष्ट्र साहित्य परिषद की स्थापना हुई। 1964 में आज ही के दिन भारत के प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास तीन मूर्ति भवन नेहरू मेमोरियल संग्रहालय बन गया था।
In 1966, D.S. Joshi was appointed as the Cabinet Secretary of India. He held this office till 31-12-1968. In 1967, the first Indian-made AVRO aircraft passenger plane, HS-748, was handed over to Indian Airlines. And in the year 1995, environmentalist and CHIPCO leader, Sri Sundarlal Bahuguna, and the 49-day-old fast in demand for a scientific review of the controversial Thehri Dam project in UP. And in the year 1999, India won the four-nation under-21 women's hockey title, defeating England in the final at the Keene University, New Jersey. In the year 2000, Menaka Gandhi, Union Minister of State for Social Justice and Empowerment, launches a national initiative for child protection, of which Childline is an integral part.
सन 2002 में आज के दिन G8 देश परमाणु हथियार नष्ट करने की रूसी योजना पर सहमत हुए। 2003 में आज के दिन संयुक्त राज्य अमेरिका में समलैंगिकता पर प्रतिबंध रद्द हुआ। सन 2004 में अमेरिका और यूरोपीय संघ ने जीपीएस गैलीलियो के विकास में सहयोग से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए। सन 2005 में आज के दिन ब्रिटेन ने भारत की वीटो रहित स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। 2006 में ग्वेन मिन ट्रेट वियतनाम के राष्ट्रपति चुने गए। 2007 में जेम्स गार्डन ब्राउन ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पद संभाला और 2007 में ही आज के दिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने महारानी एलिजाबेथ को अपना त्यागपत्र सौंपा। सन 2015 में आज के दिन भारत के फिल्म इतिहास में अपना एक खास मुकाम रखने वाले सत्यजीत रे की तस्वीर को संयुक्त राष्ट्र ने अपने मुख्यालय में प्रदर्शित करने का फैसला किया। और अब समय हो गया है कुछ महान व्यक्तित्वों के बारे में बात करने का। तो सबसे पहले पुण्यतिथियां, सिख साम्राज्य के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा रणजीत सिंह के बारे में आज हम सबसे पहले बात करेंगे। इनका जन्म तो हुआ था 13 नवंबर 1780 गुजरांवाला में, लेकिन इन्होंने इस दुनिया से विदा ली 27 जून 1839 लाहौर में। वे शेर पंजाब के नाम से प्रसिद्ध हैं। महाराणा रणजीत सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने न केवल पंजाब को एक सशक्त सूबे के रूप में एकजुट रखा, बल्कि अपने जीवित रहते हुए अंग्रेजों को अपने साम्राज्य के पास भी फटकने नहीं दिया। 12 अप्रैल 1801 को रणजीत सिंह ने महाराजा की उपाधि ग्रहण की। गुरु नानक के एक वंशज ने उनकी ताजपोशी संपन्न कराई। उन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और 1802 में अमृतसर की ओर रुख किया।
एंड टुडे इज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ फील्ड मार्शल्स सैम होर्मुज़जी फ्रॉम जी जमशेदजी मानेकशॉ, आल्सो नोन एज सैम बहादुर। ही पास्ड अवे ऑन दिस डे इन 2008 वाज़ द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी ड्यूरिंग द इंडो पाक वॉर ऑफ 1971 एंड द फर्स्ट इंडियन आर्मी ऑफिसर to be promoted to the rank of Field Marshal. His active military career spanned four decades, beginning with service in World War II. Manekshaw joined the first intake of the Indian Military Academy in Dehradun in the year 1932. He was commissioned into the 4th Battalion, 12th Frontier Force Regiment. In the Second World War, he was awarded the Military Cross for gallantry. Following the partition of India in 1947, he was reassigned to the 8th Gurkha Rifles. Manekshaw was seconded to a planning role during 1947 Indo-Pak War and the Hyderabad Crisis. As a result, he never commanded an infantry battalion. He was promoted to the rank of Brigadier while serving at the Military Operation Directorate, and he became the commander of 167th Infantry Brigade in 1952 and served in this position until 1954, when he took over as the director of military training at Army Headquarters. After completing the High Command course at the Imperial Defence College, he was appointed the General Officer Commanding of the 26th Infantry Division. He also served as the Commandant of the Defence Services Staff College. And a film has also been made in his name, and Manekshaw was awarded the Padma Bhushan, the third highest civilian award, in 1968 for responding to the insurgency in Nagaland and Mizoram.
आइए अब बात कर लेते हैं मशहूर भारतीय नृत्यांगना एवं कोरियोग्राफर अमला शंकर के बारे में, जिनका जन्म हुआ 27 जून 1919 जैसोर में और विदाई इन्होंने दुनिया से 24 जुलाई 2020 कोलकाता में। अमला शंकर अपने समय की प्रसिद्ध नर्तक एवं कोरियोग्राफर उदय शंकर की पत्नी और दिग्गज सितार वादक पंडित उदय शंकर की भाभी थी। अमला शंकर ने उस दौर में नृत्य का प्रशिक्षण दिया जब महिलाओं के नाचने को समाज में बहुत ही बुरी दृष्टि से देखा जाता था। कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने 2011 में उन्हें बंग विभूषण से सम्मानित किया। अमला शंकर ने साल 1948 में कल्पना फिल्म की मुख्य भूमिका निभाई थी और उसी फिल्म का ये जो साउंड ट्रैक है वो हमारे श्रोता से सुन रहे होंगे।
एंड टुडे इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ E.R. Braithwaite, Edward Ricardo Braithwaite, publishing as under this name as the Guyanese-born British-American novelist, writer, teacher, diplomat, best known for his stories of social conditions and racial discrimination against black people. He was the author of the 1959 autobiographical novel To Sir With Love, which was made into a 1967 British drama film of the same title starring Sidney Poitier and Lulu. The narrator is an engineer, but to make ends meet, he accepts the job of a teacher in rough London school. A snippet of a song from To Sir With Love.
Someone who has taken you from crayons to perfume. It isn't easy, but I'll try.
और अब बात हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध भारतीय गायक नितिन मुकेश माथुर के बारे में। आपका जन्म हुआ 27 जून 1950 को। वे अपने समय के ख्याति प्राप्त सिने पार्श्व गायक मुकेश के पुत्र हैं। नितिन मुकेश ने अपनी गायकी के अंतर्गत कई यादगार गीत भारतीय सिनेमा को दिए हैं और नितिन मुकेश ने हिंदी फिल्मों में अपने पार्श्व गायन के लिए जो है एक से बढ़कर एक गीत दिए हैं, तो सुन लेते हैं उन्हीं की आवाज में ये गीत।
जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी।
And today is the birthday of J.J. Abrams, or Jeffrey Jacob Abrams, the American filmmaker, composer. He's best known for his works in the genre of action, drama and science fiction. Abrams wrote and produced films such as Regarding Henry, Forever Young, Armageddon, Cloverfield, Star Trek, Star Wars, The Force Awakens. A snippet of a song from the film Forever Young.
अब अपने श्रोताओं को जानकारी देते हैं भारतीय हिंदी सिनेमा में एक महान संगीतकार के रूप में प्रसिद्ध आरजी बर्मन के बारे में, जिनका जन्म हुआ 27 जून 1939 कोलकाता में और इन्होंने इस संसार से विदा ली 4 जनवरी 1994 मुंबई में। आरडी बर्मन का पूरा नाम राहुल देव बर्मन था और फिल्मी दुनिया में वे पंचम दाह के नाम से विख्यात थे। उन्होंने अपने कैरियर के दौरान लगभग 300 फिल्मों में संगीत दिया। मधुर संगीत से श्रोताओं का दिल जीतने वाले संगीतकार राहुल देव बर्मन ने पश्चिमी संगीत को मिलाकर अनेक नई धुनें तैयार की। उन्होंने अपने कैरियर के दौरान लगभग 300 फिल्मों में संगीत दिया, तो सुन लेते हैं पंचम दाह की कुछ यादगार संगीत रचनाओं की एक मधुर मेडली। वैसे आज पीटी उषा उरन पड़े का भी जन्मदिन है। 27 जून 1964 को उनका जन्मदिन हुआ था, तो उनको ढेर सारी जन्मदिन की शुभकामनाएं। और चलते चलते अपने श्रोताओं से यही कहेंगे आज का विचार कि टूट कर भी अपनी चमक जो नहीं खोता है वो हीरा आखिर हीरा ही होता है। इसी विचार के साथ इजाजत दीजिए रवि कपूर और अनीता आनंद को आज से मेरे कार्यक्रम यहीं संपन्न करने के।
स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट इज समाचार प्रभात अवर हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। हैव अ सुपर्ब डे।
नमस्कार।